그러니까 뭐 힘이 됐다라.
برادران اهلی سنت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. رسول أكرم سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت و محبت پورے خلوص کے ساتھ نذر کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تعالی نے انسان کو روح اور جسم دونوں سے مرکب بنایا. روح جب تک جسم میں ہے تو جو احکام روح سے متعلق ہیں جسم پر بھی وہ احکام طاری ہوتے ہیں. تو اس لیے اب یہاں ایک چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے کہ روح ہے کہاں بدن میں. تو اس چیز کا ایک فیصلہ ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے آدمی کے اندر روحانیت پیدا ہو سکتی ہے. اگر بدن میں روح نہ ہوتی تو آدمی کو ٹھوکر لگی پاؤں میں اور آنکھ سے آنسو کیوں بہا، اور پورے بدن میں تکلیف کا کیوں احساس ہوا.
اللہ،
آدمی کھڑا چل رہا تھا، اس کے انگوٹھے میں ایک چوٹ آئی، فوراً بیٹھ گیا، انگوٹھا پکڑ لیا اور آہ آہ کرنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح تو پورے جسم میں ہے، اور جسم میں ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو اسی وقت وہ اثر انداز ہوگی جبکہ روح کا وہاں سے تعلق پورا ہو. ایک کسی شخص کو اگر پیرالیسس ہو گیا یعنی فالج ہو گیا, اس کے ہاتھ بیکار ہو گئے, اس میں دانت بھی کاٹو تو اس کو پتہ نہیں چلتا. آخر روح کا اس سے تعلق مضبوط ہے کہ کمزور, اس کی وجہ سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے. مگر یہ یاد رہے کہ روح کا ایک مرکز ہے پورے جسم کے اندر, اس چیز کو کہتے ہیں دل. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. سن لو, جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ طاقتور ہو جائے گا تو پورا جسم طاقتور ہوگا, اور اس میں بیماری آ جائے گی تو پورے جسم میں بیماری سرایت کر جائے گی. وہ دل ہے دل, الا وہی القلب, اس گوشت کے ٹکڑے کا نام دل ہے دل. ایک تو آپ طبی حیثیت سے اس پر غور کریں, یعنی جسمانی امراض و اسقام وغیرہ کے اعتبار سے, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جسم کی میں اگر دل کی بیماری ہو جاتی ہے آدمی کو, تو نہ اس وقت خون کی روانگی قابو میں ہوتی ہے کہ اس نس سے اس نس میں کس طرح پر پہنچے, کیا دباؤ پڑے, یہ نہیں صحیح رہتا. اسی طرح اب اس کا سر بھی چکراتا ہے, ہاتھ بھی کانپنے لگتے ہیں. اگر دل میں بیماری آئی تو پورے جسم میں بیماری کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ تو طبی نقطۂ نگاہ تھے, مگر یہ اگر روحانیت کے اعتبار سے غور کیا جائے تو آدمی کا دل بیمار اس طرح نہیں ہوتا کہ بلڈ پریشر وغیرہ ہو گیا. اس کا دل بیمار یہ ہوتا ہے کہ سوچتا ہے تو غلط بات سوچتا ہے, سوچتا ہے تو چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے, جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے, شراب خانے جانے کا ارادہ کرتا ہے. یہ سب ارادے دل میں جو پیدا ہوتے ہیں اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب دل یعنی انسان کی روح کا مرکز اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس طرح کی بیماریاں اس میں پیدا ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ بلڈ پریشر ہو گیا, یہ بیماریاں تو ہیں مگر یہ جسمانی اعتبار سے, مگر روحانی اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا مکلف انسان جب ہوتا ہے تو وہ ایمان کا مکلف ہوتا ہے, اور ایمان دل کا کام ہے زبان کا نہیں. اگر دل میں یقین نہ ہو, اللہ کی وحدانیت کا لا الہ الا اللہ 1000 بار پڑھے مسلمان نہیں ہوگا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایمان کا دار و مدار دل کے قبول پر ہے. سمجھ میں آیا؟ نماز تو پڑھ لو گے سر جھکا کر، کمر جھکا کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یہ سب نماز تو پڑھ لو گے، مگر نماز کی روح نہیں ملے گی جب تک کہ دل میں اس کا آدمی کے دل میں اس کا ذوق نہ پیدا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوا ہا ہونا، دست مبارک سے یوں اشارہ کر کے فرمایا التقوا ہا ہونا، پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے. دل پہلے پرہیزگار بنے گا، کیونکہ دل مرکز روح ہے. اب یہ ہوگا تو اب اس کا ہاتھ بھی اسی حساب سے کام کرے گا، پاؤں بھی اسی اعتبار سے کام کریں گے، سمجھ گئے؟ زبان بھی اسی طرح سے کام کرے گی، آنکھیں بھی اسی طرح سے اٹھیں گی، قدم بھی اسی طرح سے رکیں گے یا چلیں گے اس کے اعتبار سے. تو اس لیے روحانیت اسی چیز میں ہے، آدمی دل بنائے. اسی لیے سرکار آتی فرماتے ہیں دل جو گھر خاص تھا ان کا، دل جو گھر خاص تھا ان کا، نہ بنایا اس کو مسجد و دیر بنائے سے کیا ہوتا ہے. ادھر پہلے دوسرو سمجھ میں آیا؟ اسی کو ایک شاعر نے بھی کہا کہ مسجد تو بنا ڈالی سب بھر میں، ایماں کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اس لیے روح جو ہے یہی اصل آدمی کو یہی روح جو ہے مکلف بناتی ہے. سمجھ گئے؟ یہ روح حیوانی نہیں ہے، یہ روح انسانی ہے. سمجھ گئے؟ روح حیوانی تو یہ ہے کہ کھایا پیا مر گئے. جس طرح سے کہا اکبر الہ آبادی نے کہ ہمارے زمانے کے لوگ بالکل جانور جیسے ہیں، کیا بتاؤں میرے احباب کیا کیا کر گئے، کیا بتاؤں میرے احباب کیا کیا کر گئے، بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پنشن ملی پھر مر گئے. بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پنشن ملی پھر مر گئے، یہی کام کیا. یہ نہیں بلکہ آدمی اگر کام کرتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. آج مجھے بتاؤ کہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، سیدنا جنید بغدادی کے دربار میں، سیدنا غوث اعظم کے دربار میں لوگ جاتے ہیں تو کچھ پاتے ہیں، جب ہی تو جاتے ہیں. جو آدمی مر جاتا ہے وہ کسی کو نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، مگر جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے وہی روحانی انسان. اس لیے روح کے لیے قرآن عظیم نے انسانوں کو زیادہ مکلف بنایا. سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، اب روح کے افعال ہیں خوف، ڈر، یہ روح کو ملتا ہے، ہاتھ کو نہیں. रूह डरती है तो हाथ भी कांपने लगते हैं। शर्मिंदगी रूह पर आती है, अब उसके बाद चेहरे पर जर्दी छा जाती है। गुस्सा रूह को आता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो ये चेहरा, चेहरे को गुस्सा नहीं आया, बल्कि ये दिल के गजब का एक इजहार है उसका। इसलिए अल्लाह रूहानियत वालों ने ये बुनियाद रखी कि दो काम जब आदमी की रूह करेगी तो उसके अफआल हरकात सकनात सब के सब दुनिया से जुदा गाना होंगे। एक खौफे इलाही, दूसरे हुब्बे रसूल। समझ गए? हुब्बे रसूल हो तो उसी एतबार से, खौफ इलाही हो, खुदा का खौफ दिल में लाओ, दुनिया तुमसे खौफ करेगी, जानवर खौफ ज़दा होंगे, सांप बिच्छू कीड़े मकूड़े सब तुमसे डरते रहेंगे, मगर खौफ तो पहले दिल में आए, जैसा खौफ वैसे ही उसके नतीजे जाहिर होंगे। किसी का खौफ ऐसा होता है कि पूरा वजूद ही इसका खौफ में होता है। देखो कितने औलिया किराम ऐसे हुए कि जंगल में पड़े रोते ही रहे दिन रात, कोई उनसे बात करे न करे वो रोते ही रहते। तो ये खौफ है, ये खौफ खुद ऐसा है। तो ऐसे खौफ वालों से शेर चीता सांप बिच्छू भी खौफ ज्यादा रहते हैं। खौफे इलाही की वजह से आदमी नमाजी भी हो सकता है, रोजेदार भी हो सकता है। रुब्बे रसूल की वजह से आदमी जान भी कुर्बान कर सकता है, हर काम के लिए तैयार। आप बताइए कि सहाबा किराम अपने इश्क की वजह से क्या ये नहीं कहते थे? मैंने बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ी, एक शख्स हाथ में खजूरें लेकर खा रहे थे जंगे उहुद में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए, फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मैं शहीद हो गया तो कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? फरमाया फिल जन्नत, जन्नत में। तो बुखारी में यह है कि उन्होंने जो खजूरें मुट्ठी में रखी थी जो जमीन पर दे मारी और जिहाद के लिए लपक गए, भीड़ में चल दिए, उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया। समझ गए? तो ये कब होता है? जब आदमी रसूल की महब्बत में सरशार हो, वो जानता है कि जन्नत इन्हीं के कदमों से मिलेगी और रब्बे कदीर की रहमत का तसव्वुर भी जमाओ, उसके गजब से भी डरो और उसकी रहमत से भी मायूस ना हो। समझ में आई बात? मुझे एक हदीस ऐसी याद आई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मैं उस शख्स को भी पहचानता हूं जो जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा और सबसे बाद में जन्नत में पहुंचाया जाएगा, मैं उसको भी पहचानता हूं। फरमाते हैं ये वो शख्स है कि अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में सुलग रहा होगा, जल रहा होगा, जितने जन्नती जाने वाले थे सब चले गए। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को اب سب سے اخیر میں جہنم سے نکال کر جہنم کے کنارے کھڑا کر دے گا, منہ جہنم کی طرف پیٹھ دوسری طرف, عرض کرے گا, تھوڑی دیر تک ایسے ہی کھڑا رہے گا, عرض کرے گا, یا ربی صرف وجهی من النار فإنه قد قصبتنی ریحها وحرقنی ذکاؤها. اے اللہ, میرا منہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے, کیونکہ جہنم کی تپش مجھے جھلسائی دے رہی ہے. وَأَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا, اور اس کی لپٹ مجھے جلائے دے رہی. اے اللہ, یہ عرض کرے گا تو رب قدیر کا جواب آئے گا, اگر تیری یہ آرزو پوری کر دوں تو پھر دوسری آرزو لے کے بیٹھ جائے گا. تو کہنے لگا, اب نہیں بس یہی ایک, اب کچھ نہیں. سوچو جہنم میں جل رہا تھا تب تو یہ نہیں کہا کہ مجھے نکال دے نکال دے, اور جہنم سے نکل کے باہر آ گیا تو اب وہ جہنم کی طرف ہے پیر دوسری طرف, تو اب اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے. اب کہہ رہا ہے, اے اللہ, اس کی لپٹ مجھ کو جھلسائے دے رہی ہے اور اس کی تپش مجھے جلائے دے رہی ہے. اے اللہ, میرا منہ دوسری طرف کر دے. فرمائے گا, اگر تیری یہ تیری آرزو پوری کر دوں تو پھر دوسری فرمائش لے کے بیٹھ جائے گا. اس کا نہیں, اللہ, بس یہی لیٹسٹ, آخری یہی ہے, اب کوئی نہیں, یہی اول یہی آخر. اللہ تعالی اس کا رخ دوسری طرف موڑ دے گا, تھوڑی دیر کھڑا رہے گا, اس کے بعد سر اٹھائے گا, دیکھے گا ایک بڑا گھنا درخت ہے سامنے, اس درخت کی جڑ میں تھے ایک پانی کی نہر, صاف شفاف چمکتے ہوئے پانی کی نہر جاری ہے, پتے خوب جھول رہے ہیں ہوا سے. دیکھے گا ایک عجیب کیفیت اس پر تاریخ ہو جائے گی, چپ چاپ کھڑا رہے گا کچھ دیر, پھر عرض کر گئے, یا ربی قربنی من تلک الشجرہ لکی استظل بظلہا واشرب من مائہا. اے اللہ, مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے. دنیا میں تو بہت پھرکتے ہو ادھر سے ادھر, مگر قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے بغیر آدمی اپنی گردن بھی موڑ لے. ایک انچ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, اسی کے حکم سے سب. اے اللہ, مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ اس کے سائے میں کچھ دم لوں اور اس شفاف پانی سے میں اپنی پیاس بجھاؤں. اللہ فرمائے گا, ما اغدرک یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, بڑا دھوکے باز ہے تو, قسم کھا کے تو نے کہا تھا کچھ نہ مانگوں گا پھر مانگتا ہے. اے اللہ, یا ربی لا تجعلنی اشقا خلقک, اے میرے پروردگار, اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بد نصیب مجھے مت بنا دے. اے اللہ, अब उजाला भी तो पड़ा हुआ है उसी में। हाँ, मुझे सबसे बड़ा बदनसीब ना बना या अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, अगर ये तेरी फरमाइश पूरी कर दूँ तो फिर कुछ और मांगेगा ना? ए अल्लाह, को नहीं, कसम खा के नहीं मांगेगा, कसम खाएगा, पक्का पैमान बांध कि नहीं मांगेगा कुछ। ए अल्लाह, मैं पक्का अहदो पैमान करता हूँ कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही आखिरी गुजारिश है। अल्लाह कसम वगैरह लेकर फिर उसको उस दरख्त के करीब पहुंचा देगा। दरख्त के नीचे पहुंच कर कितना सुकून उसको मिलेगा, चैन, प्यास बुझाने के लिए ठंडा ठंडा चमकदार पानी सब मिल रहा है, पी लिया। फिर नजर उठाई तो जन्नत का फाटक दिखा। क्या डेकोरेशन है, क्या सजावट है, बाहर से ऐसा है तो अंदर क्या होगा है? कुछ देर चुपचाप खड़ा रहेगा, फिर उसके बाद दिल की हूक बढ़ जाएगी। वो अर्ज करेगा, या रब्बी करिबनी मिन बाबिल जन्ना, ए अल्लाह मुझको जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दे ताकि मैं उसका डेकोरेशन वगैरह ठीक से देख लूं। तो अल्लाह फरमाएगा, मा अख्तर कजा इब्लादम, कितना धोखेबाज गद्दार है तू, ये क्या कर रहा है? तूने अभी कसम खाई थी, अहद किया था कुछ ना मांगेगा, तो कह गए या रब्बी, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैं तेरी मखलूक में सबसे बड़ा बदनसीब नहीं, ला अकूनु अशका खल्किक, मैं सबसे बदनसीब नहीं हूँ, बड़े बड़े बदनसीब अभी जहन्नम में पड़े हैं, ए अल्लाह करम फरमा दे मुझे, अगर तेरी ये फरमाइश पूरी कर दूं तब फिर कोई मांगेगा बात नहीं, ए अल्लाह बस आखिरी, ठीक है कसम खा, आदो पैमान बात सब हो गया, अल्लाह उसको जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दिया। वहां पहुंचेगा, देखेगा, ओह लालच बढ़ती चली जाएगी, अंदर से जन्नतियों की गुफ्तगू और उनकी खुशियों की चहल पहल कुछ आवाज आएगी, चिड़िया चहचहा रही होगी, खुशबुओं के भपके अंदर से आ रहे होंगे। अब तो ये सब महसूस करके उसकी लालच बढ़ जाएगी, ए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखला दे दे ताकि मैं देख करके आ जाऊं कि अंदर क्या क्या नियामतें हैं। अल्लाह फिर वही फरमाएगा, कितना बड़ा फरेबी धोखेबाज, कसम खाया था कुछ ना मांगेगा, फिर आगे मांग रहा क्या? ए अल्लाह तेरी मखलूक में सबसे बड़ा बदनसीब नहीं, तो अब अल्लाह उसको जन्नत का के दरवाजे में वो दाखिल होने का के लिए इजाजत दे देगा। कदम उठाकर पहला ही कदम जन्नत में पड़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा, मांग क्या मांगता, जो मांगना हो मांग ले। तो अब वो मांगता जाएगा, जितनी ख्वाहिशात थी सब पूरी हो गई, तो अल्लाह फरमाएगा, फला चीज क्यों नहीं मांगता, हाँ ये अल्लाह को याद नहीं आई, फला चीज क्यों नहीं मांगता, फला चीज क्यों नहीं मांगता। ये तब होता जाएगा, फिर जब ये सब आरजुएं पूरी हो जाएंगी, अल्लाह फरमाएगा ذَلِكَ لَكْ وَأَشَرَتُ أَمْثَالِهِ مَحَا، جَا تجھے یہ سب دیا جتنا تم نے مانگا اور 10 گنا اور لیتا جا۔ اب تو خوشی میں جھومتا ہوا جنت میں اعلان کرتا جائے گا، چیخ چیخ کر کہے گا اعطانی ربی ما لم يعطي آدم من العالمين، میرے رب نے مجھ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ پورے جہان میں کسی کو بھی اتنی نہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، پوری جنت میں وہ چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہوگا، اے اللہ اے اللہ یہ اللہ نے مجھ کو کتنا دیا، کسی کو نہیں دیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ سب بیان کرنے کے بعد، ذالک ادنا اہل الجنت منزلتن، مرتبے کے اعتبار سے سب سے نچلے درجے کا جنتی یہی۔ تب صحابہ نے عرض کی، سب سے نچلے درجے کا جب یہ ہے تو اوپر کے درجوں کا کیا ہے؟ تو اب ان کے فضائل و کمالات میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جنت مانگیں گے نہیں، اللہ خود پیش کرے گا۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ حدیث سنی کہ رسول پاک ممبر پر فرما رہے تھے کہ جنت میں ایک بابو صدقہ ہے، جو لوگ خیرات صدقہ بہت کرتے ہیں ان کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، ایک بابو صلات ہے، ایک بابو رجان ہے، یہ ایک بابو جہاد ہے، اس طرح سے ایک ایک دروازے کا نام آقا کائنات بتاتے جا رہے ہیں کہ نماز خوب نماز پڑھنے والوں کو بابو صلات سے بلایا جائے گا، خوب روزہ رکھنے والوں کو بابو رجان سے بلایا جائے گا، جہاد میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے والوں کو ایک بابو جہاد سے بلایا جائے گا۔ ابھی یہی میرے آقا نے فرمایا تھا، آگے نہیں بڑھے تھے کہ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اس سے مطلب نہیں کہ کسی کو بابو رجان سے بلایا جا رہا ہے، کسی کو بابو صلات سے، کسی کو بابو صدقہ سے، کسی کو بابو الجہاد سے، ان سب باتوں سے مجھے مطلب نہیں۔ هل احد يدعى من كل باب، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ہر دروازہ اس کو پکار رہا؟ فرمایا نام، ہاں وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْ، اور تم ان میں سے ایک ہو، ہر دروازہ پکارے گا، اے ابو بکر ادھر کہاں جاتے، ادھر آؤ، ہم کو نواز دو، ہمیں برکت دے دو، جنت کے ہر دروازے جس کے آرزو مند۔ سبحان اللہ، تو یہ روحانیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے پہلوان نہیں تھے، ابو بکر صدیق بہت ڈیل ڈول والے نہیں تھے، عثمان غنی کے جیسے مالدار نہیں تھے، مگر ان کی روحانیت اتنی اونچی ہے، اتنا بلند ان کا مرتبہ ہے کہ جنت کا ہر دروازہ ان کو پکار رہا ہے، ہر دروازہ۔ ہم تو دروازے کی آرزو کریں، وہاں دروازے ابو بکر کی آرزو کریں، یہ شان ہے۔ تو روحانیت ایک طرح کی، وقت زیادہ ہوا، اب روح کے معاملے پر لمبی گفتگو کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے، बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी का रूह का सबसे पहला काम ईमान है और उसकी हिफाजत है। अगर ईमान न लाया, जितना भी तुम जादू करो और टोना करो, ये करके अपना सब लोगों पर धाक जमाओ, पैसा जमा करके, उससे कुछ बनने वाला नहीं। दुनिया ही पर सारा खात्मा नहीं, दुनिया तो जिस्म पालने के लिए पालो अगर दुनियादार हो, और अगर दीनदार हो तो जिस्म ही रूह को पालो, रूह की परवरिश करो, रूह के अंदाज बदलो, और वो सिर्फ खौफ इलाही और हुब्ब रसूल से पैदा होगा, ईमान की पुख्तगी से हासिल होगा। समझ में आई बात? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक वाकया कि गुजरी हुई उम्मतों में एक बहुत धाकड़ बादशाह गुजरा, बड़ा लंबा चौड़ा उसका मुल्क था। उसने कहा, मैं अपने पूरे मुल्क का विजिट करना चाहता हूँ, जायजा लेना चाहता हूँ, इसलिए सबसे बेहतर जोड़ा मेरी पोशाक के लिए लाओ। हजारों जोड़े लाकर पेश किए गए तो उसमें से एक जोड़ा उस बादशाह को पसंद आया, उसने उसको पहना। फिर कहा कि घोड़ा लाओ, सबसे अच्छा घोड़ा। कई हजार घोड़ों में से एक घोड़ा उसने पसंद किया। अब वो घोड़ा आ गया, वही पोशाक और वही घोड़ा घोड़े पर सवार हुआ। दोनों तरफ मुल्क के सारे सिपाही और फौजें कतार लगाए हुए खड़े और उसके साथ मुल्क की सैर के लिए जा रहे हैं। बादशाह घोड़े पर बैठा और बात नाक नखरे और तकब्बुर के साथ अपनी अकड़ दिखाता हुआ उस घोड़े पर गुजर रहा था। अभी चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि एक फकीर आया, खट घोड़े की लगाम पकड़ी और अपनी गर्दन ऊंची करके बादशाह से कहा, बादशाह मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कहा, जब मैं विजिट से वापस आऊं तो मेरे दरबार में आके बात करना। तो फिर उसने जरा गर्दन और ऊंची कर ली, कान के पास लगे, हे बादशाह मुझे पहचानता नहीं है, पहचानता नहीं है? मैं मलकुल मौत हूं। अब ये सुनना था, सारी हवाइयां उड़ गईं, सब हालात खराब होने लगे, थर 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 कांपने लगा बादशाह। कैसे आप आए? कि तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूं ए मलकुल मौत, खुदा के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, मैं अपनी हुकूमत के बारे में कुछ वसीयतें तैयार कर लूं, और किसको ये सौंपा जाए काम, किस तरह चलाया जाए, इसकी मैं वसीयत तैयार कर लूं, थोड़ा सा वक्त दे। ना तुझे एक मिनट भी वक्त ना मिलेगा। उन्होंने लगाया रूह फौरन निकाल ली, चले गए। धम से वो नीचे आ गिरा बादशाह, समझ गए। अब वहां से वो चलते हुए उसी फकीर के रूप में एक शहर की गली के नुक्कर पर खड़े हो गए। एक मौलवी साहब सूफी किस्म के, वो उधर से हाथ में एक झोला लिए हुए बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। इन्होंने बढ़कर, इस फकीर ने बढ़कर रोक लिया, कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब? अरे अजान हो गई है, बच्चों के लिए कुछ सब्जी तरकारी और कुछ सामान वगैरह लाना है, बस उसी के लिए मैं जल्दी में हूँ कि कहीं मेरी नमाज न छूट जाए। मुझे जल्दी इजाजत दो। तो उन्होंने कहा आप मुझे पहचानते नहीं हैं? कि नहीं, तो मैं नहीं पहचानता, मैं मलकुल मौत हूं। ओहो, आप हजरते मलकुल मौत हैं? सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, कितनी रातें मैंने सच्चे में गुजारी कि मलकुल मौत आ जाए, इसी हाल में मेरी रूह ले जाए। कितने दिन मैं तड़पता रहा, दुआएं करता रहा, अल्लाह उनको भेज दे कि मैं तेरी इबादत और बंदगी में रहूं और मलकुल मौत मेरी रूह निकाले। आ गए आप, बहुत आपका करम है, बड़ा इंतजार कराया आपने, मेरी रूह निकाल लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, कोई काम हो, सब्जी वगैरह जो कुछ लेनी है जल्दी जाइए, सब लेके आइए, कि मुझे उस सब की नहीं परवाह, अल्लाह ने मेरे बच्चों को पैदा किया है, वही उनका रज्जाक है, वो रोजी देगा। अब आप मेरा काम, मुझसे जो काम आपका है वो काम कीजिए। कहा मैं रूह कब्ज करने आया हूं, तो देर मत कीजिए। कहा नहीं, आप अपना काम कर लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या आप मुझे इतनी मोहलत दे सकते हैं? कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि वो मौलवी अगर कुछ वक्त मांगे तो दे देना। अच्छा, उसने मुझे वक्त देने के लिए कहा? मलकुल मौत बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे इतना वक्त दे दो कि मैं यही वुजू कर लूं और मुसल्ला बिछा कर नमाज शुरू कर दूं, जब मैं सज्दे में पहुंचूं तब आप रूह निकाल देना। जरा देखो, एक वो भी है, वो भी इंसान, घोड़े पर थे ऐसे जलील होके गिरा, और एक ये भी इंसान है। तो का मुझे इतना वक्त दे दो। कहा ठीक है, वक्त कर लीजिए। तो जल्दी से उन्होंने वुजू किया, वहीं अपना रुमाल बिछाया और नमाज शुरू की, सज्दे में गए, मलकुल मौत उनकी रोक कर ऊपर लेके चले गए। आकाए कायनात ने बिल्कुल सही फरमाया है कि अक्रब मा यकून العبد من الله تعالى ما يكون في السجود, बंदा खुदा के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सज्दे में होता है। दिल लगा के सज्दा करो, ये वर्दिश की नियत से नहीं, बल्कि दिल लगाओ, अल्लाह की अजमत को सज्दा करो, अल्लाह की उबूदियत और खालिक अपना सर अपनी जान उसकी बारगाह में नजर करने की नियत से सज्दा करो, देखो वो सज्दा क्या सर बुलंदी अता करता। ये रूहानियत का है। और अगर ये सब कुछ नहीं तो फिर कितनी ही दौलत है कुछ नहीं। दौलत से आदमी, मुल्कगीरी से आदमी बड़ा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की अताओं से बड़ा होता है। सहाबे किराम में कई सहाबा मुझे मालूम है कि बड़े बड़े मालदार थे, बहुत बड़े बड़े मालदार। सैयदना उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू मसूद अंसारी, जुबैर इब्न अव्वाम और दूसरे भी कुछ हैं, बड़े बड़े मालदार, मगर माल की हैसियत उनके पास क्या है, दुनिया की पूंजी वो किस नजर से देखते हैं, खाने पीने के तकल्लुफात को वो क्या समझते हैं। सुनो, बुखारी शरीफ में यह हदीस है, एक दावत में सुबह शायद नाश्ते की दावत रही हो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को दावत मिली। ये रसूल पाक के वो सहाबी हैं जो अशरे मुबशरा में शुमार होते हैं। दावत में ये गए, देखा बड़ा तकबर तकल्लुफ दस्तरखान, तरह तरह की वैरायटियां इंतजाम में, देखा देख करके फरमाने लगे, आ मुसअब इब्न उमैर उहद में शहीद हुए और उनके वो जो कंबल वो पहन कर जिहाद में गए थे उसी कंबल में वो शहीद हुए, और जब उनको कफन दिए जाने लगा उसी कंबल में लपेटा गया, इतना छोटा वो कंबल पड़ गया कि अगर सर छुपाते तो पांव खुल जाता, पांव छुपाते तो सर खुल जाता। ये कैफियत, तो रसूल पाक ने हमको हुक्म दिया सर छुपा दो, पांव पर इसखिर घास डालकर घास से छुपा दो, और इस तरह दफन किए गए वो है। वो मुझसे बेहतर थे, वलम याकुल मिन अजरही शैअन, उन्होंने अपने अपने अजर और सवाब में से एक हब्बा भी नहीं खाया, इतनी जफा कशी दीन के लिए की, अल्लाह के खौफ और नबी के मोहब्बत में इतनी कुर्बानियां दी, मगर एक हब्बा भी वो अपने सवाब का नहीं पाया उन्होंने। रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैहि मिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। ये तो हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रोने लगे, फरमाया हमजा बीवी मुझसे बहुत बेहतर थे और वो भी अपना अजर लिए बगैर दुनिया से चले गए। हम लोग वो हैं कि दुनिया में हमारी नेकियों का फल पक गया है, तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, ये सब है। रोने लगे जार खतार और कहा मैंने रोजे की नियत कर ली, मैं नहीं खाऊंगा। समझ रहे, ये लोग थे। मगर अब्दुर्रहमान इब्न औफ इससे पता चलता है बहुत मालदार रहे, मगर खौफ इलाही और हुब रसूल में उनका क्या दर्जा था वो आप सोचिए। उनकी शान ये है कि रिवायतों में ये लिखा है सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ का माल बेहिसाब बढ़ गया, तो उन्होंने फरमाया मेरे सारे माल को दो हिस्से करो, एक राह खुदा में एक मेरा। फिर अब वो एक मेरा बढ़ना शुरू हुआ, पहले के जैसा हो गया, फिर दो हिस्सा करो, आधा राह खुदा में आधा मेरी तरफ। फिर कुछ दिनों में उतना ही हो गया, फिर फरमाया मेरे सारे माल को दो हिस्सा करो, आधा इधर आधा उधर। फिर उसके बाद फिर बढ़ गया, तो चौथी मर्तबा उन्होंने ये हुक्म दिया फिर इसको दो हिस्से करो। समझ गए, उसके बाद आपकी वफात हुई तो बड़ा माल वो छोड़ करके गए। चार बीवियां थी, सिर्फ जो नकद पैसे बटे तो उसमें एक एक बीवी को 48,000 का हिस्सा मिला था, 48,000 दिरहम। और जो जायदाद थी वो अलग है, ये रुपया पैसा जो कैश था उसमें इतना। अब आप सोचो कि ये लोग माल रखते थे मगर रूहानियत कहाँ थी, ये इनके इनके दिल में लालच न थी। इसलिए रफीकान मिल्लत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, ऐ इंसान तू बहुत फख्र करता है, गमन करता है, अब कभी अपनी दौलत पर, कभी अपने इल्म पर, कभी अपनी मकबूलियत पर, ये सब तू करता है, कभी सोचता है तेरे पेट में कितने शेर पखाना भरा हुआ है, कभी सोचता है कि तेरे पेट में कितना पेशाब रखा हुआ है, कभी ये तो सोच, तब तुझे अक्ल आएगी और तब उसके बाद तू तेरे अंदर रूहानियत बेदार हो। समझ में आया? फरमाते हैं दिल के बहुत सी बीमारियां हैं दिल की, वो उम्मा तो अमरा दिल कल्बी सलातुन, दिल की बीमारियों में तीन बीमारियां बुनियादी बीमारी ऐसी बुनियादी फरमाते हैं वो क्या है, अर्रिया मक्कारी है, वल उज्ब तकबुर, वल हसद और लोगों की भलाइयों पर हसद करना, उससे जेलित रखना। तो ये आप समझो कि इन कम से कम इन तीन बुनियादी बीमारियों से अपने आप को पाक करो, तब रूहानियत पैदा होगी। मगर क्या है, आदमी दिखावे के लिए बेटे बेटे की बेटी की शादी करता है, दिखावे के लिए कितनी लंबी दावत, कितना लंबा जहेज, कितने उसके लिए इंतजाम वगैरह करता है, ये सब दिखावा है। अर्रिया और भी ये है कि देखो भाई मैं मस्जिद के लिए इतना रुपया दूंगा मगर मेरे नाम की तख्ती लगा देना, है तो ये मकारी है कि नहीं? तुमने अल्लाह के लिए दिया है तो ये कैसी तख्ती है, तख्ती लगाओ लिल्ला है, एक बंदे इलाही अपने रब के नाम से ये दे रहा, ये तो नहीं हो सका। तुम और तब बहुत से उज्ब यानी तकब्बुर का यह हाल है कि हमेशा आदमी बड़ा बनता है अपने छोटे लोगों के सामने, अपने बड़े लोगों के मामले में अपने ऊंचे से मालदार को देखेगा तो लालच करेगा, नीचे वाले को देखेगा तो तबक तकबर करेगा। इसीलिए मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। क्या मतलब हुआ? दुनिया के मामले में मालदार को देखोगे, अपनी गुर्बत पर रोओगे, अल्लाह का शुक्र ना अदा करोगे बल्कि लालच करोगे, हमने क्या गलती की थी कि अल्लाह ने हमको गरीब बनाया, ये सब कहो, ना शुक्री करोगे। मगर अगर तुम अपने से नीचे वाले आदमी को देखोगे दुनिया के मामले में, तो शेख सादी फरमाते हैं हलब के नवाब साहब के यहाँ दावत थी, मैं दावत में गया, बहुत तारकशी का शानदार जूते पहन कर गया, भीड़ में मेरा एक जूता गुम हो गया, अब एक ही जूता बचा, अब वही पहन के मैं जा रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ मेरा वो जूता। इतने में एक नवाब ज़्यादा उधर से आया, दोनों पाँव में बैठे ही तारकशी जूता पहने हुए है, मैंने उसको देखा, ओह मेरा भी जूता ना गुमा हुआ होता तो आज इसकी मौत पट कर देता मैं। हाँ मेरे जूते भी क्या बताऊं। फिर अभी कहते हैं कि मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो एक आदमी बैठाखी लगाकर एक टांग कटी हुई और आ रहा है। मुझे देखा तो मैंने कहा, ए अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है कि मेरा एक जूता ही गायब किया। पांव तो दोनों सलामत रखे। ये दुनियादारी के मामले में अपने से कम वालों को देखो तो अब शुक्र करोगे, और अगर अमीरों को देखोगे तो नाशुक्री करोगे। समझ गए? दीनदारी के मामले में ऊपर वाले को देखो, नीचे वालों को देखो, अरे यार ये पांच नमाज में से भी एक एक कभी कभी कजा करता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, अवाबीन भी पढ़ता हूँ, इशराक भी पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ। तो क्या हुआ? तकब्बुर आ गया है? अपने से नीचे वाले को देखा कि वो तो नमाज में कमी भी कर देता है, रोजा रखता है, कई एक छोड़ देता, छोड़ पकड़ रोजा पकड़ रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसों रोजा पूरा पूरा रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। ये तकब्बुर पैदा हुआ। और अगर ऊपर वाले को देखो अपने से ऊपर, अरे ये या अल्लाह हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी हैं, दिन रात जब देखो इबादत में मसरूफ, बादशाह उनका कदम धो के पीता है शमसुद्दीन अल्तमश, मगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। सुभान अल्लाह। तो अब ऐसे को कोई देखेगा तो वो यही कहेगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ए अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इबादत के लायक तो बन सकूं। ये होगा। तो इसलिए दुनियादारी के मामले में गरीबों की तरफ देखो, और दीनदारी के मामले में सूफिया इकराम और बुजुर्गों की तरफ नजर उठाओ, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर रूहानियत पैदा हो। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह मतलके आला हजरत में जो तालीमात हमको मुकद्दर के तौर पर मिली, या अल्लाह उन तालीमात को मैंने तेरे इन बंदों के सामने पेश किया, या रब मुझे भी उस पर अमल करा और इन लोगों को भी तौफीक अमल अता फरमा। या अल्लाह हम सब के छोटे बड़े गुनाह दरबुदर फरमा और ऐसे आमाले सालिहा की तौफीक दे जिनकी वजह से गुनाह मिटते हैं और नेकियों की तौफीक बढ़ती है। वसल्लल्लाहु तआला अला कासिम रिज़्क़ी व नूर अर्शी सैयदना मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन बिरहमतिक या अरहम हाँ अब ये लीजिए, काम जो कुछ है करिए।
मैं अपनी जानिब से मस्जिद को वैसे कर दूंगी तमाम उनके जामिया और नवाजों को करके अल्लामा मुहद्दिस कबीर आपका बेहद मशकूर ममनून है। आपकी मालियत में आने वाले आपके दामाद करते अल्लामा मुफ्ती शाहिद रजा मिसबाही साहब, मेरी जानिब बन जानिब करते मुफ्ती जाहिद काबी साहब, मेरी पानी फकीर जाहिर, चलो ये तो और एजाज की बात है, मेरी दूसरी बहन जानिब सैयद सियाजुस्सालिकीन कैम्ब्रिज से 50 मील सफ़र करके सिर्फ हज़रत अल्लामा का खिताब ये प्लम्स्ट्रीट से अजीब मुझे बाद में पहचानने में ज़रा दिक्कत हुई। लास्ट वेडनेसडे में वहाँ हाज़िर हुआ था कि महफिल के सिलसिले में ये वहाँ से तशरीफ लाए कि मैं अपने हाई साहब की उस मालियत में हज़रत रफीक मिस भाई साहब मसलों से आप तशरीफ लाए मेरे लोकल इल्फत इस्लामिक सेंटर के मेहरबान हज़रत अल्लामा एंड जमशेद सईदी साहब और आप जितने अहबाब कुर्बो जवार से दूर नज़दीक से आए, मैं बेहद आपका मशहूर हूँ। अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे।
आमीन।
खिताब के दौरान मैं ये महसूस कर रहा था बैठे हुए कि आप हम तंग गोश हो के सुन रहे थे। 11 बज चुके हैं, 10 बजे हजरत ने अपना नूरानी बयान वाज़ो नसीहत तलकीन इरशाद फरमाना शुरू की और मुझे महसूस हुआ जिस तरह हम सब फरमा रहे थे कि पीराना साली में 92 साल 93 साल अगर उम्र हो ना याददाश्त रहती है ना आवाज़ में वो खड़ा रहता है और जिस रोबदार आवाज़ के अंदर जिस एक जोरदार आवाज़ के अंदर आपकी याददाश्त भी ये जो बयानात हजरत ने फरमाए हम पल पल के भूल चुके हैं। शायद आपने ये बातें पहले भी सुनी थी लेकिन वो एक शायर ने कहा था ना कि अंदाज़े बयान बात बदल देता है अमीर वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। आप ये कहेंगे कि हाँ ये तो मैंने सुनी हुई है, ये तो मैंने वो मौली साहब से सुनी। आज की ये नेट का ज़माना है, आप ये ऑनलाइन ज़माना है, आप घर पर बैठे अपनी पसंद के इमाम साहबान क्यों आप हम तंग गोश हो के सुनते रहे, क्यों आपने दीदा और दिल फरशे राह किए रहे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अखलस लिल्लाह 40 सबाहन ज़हरत जनाबी अल हिकमत मिन क़ल्बिहि अला लिसानिहि। जो इंसान 40 सुबह हज़रत अल्लामा के बारे में पढ़ रहा था 22 साल की उम्र की आपकी जिस वक्त आपने जामिया अशरफिया मुबारक से अपना वो तहसील इल्म का मैदान मार लिया, अपनी तालीम उसकी तालीम तो खैर कब्र के दाहने तक मुकम्मल नहीं होती, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता और पढ़ता रहता है लेकिन वो जो दौरानिया था बहसीयत तालिबे इल्म आपने 22 साल की उम्र में तदरीस शुरू कर दी थी और 22 साल कहाँ और आज 70 साल तो पूरे बांध तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो यह है मन अखलस लिल्लाहि 40 सबाहन जिसने 40 सुबह है सवा महीना बनता है डेढ़ महीना बनता है जो इंसान खालिस कर दे अल्लाह के लिए ज़हरत जनाबी अल हिकमत मिन क़ल्बिही अला लिसानिही। वो बंदा बोलता तो सादा सी जुमले है आम सी जबान के अंदर बोलता है लेकिन गोया के उसके कल्ब से उसकी जबान पे हिकमत व मौइज़त के चश्मे फूट पड़ते हैं। अब ये खूबसूरत आवाज़ ये प्यारी प्यारी सादा सादा तो इतनी उन्होंने एक अच्छी हमें नसाहे इरशाद फरमाई है तो आपका ये इतना इन्हिमाक के साथ बैठना ये उस हदीस मुबारक का ये अमली सबूत है कि हजरत किबला ने 40 सुबह खालिस नहीं की 70 साल अपनी जिंदगी के सुबह भी और शाम भी तलबा की खिदमत भी की तलबा को जेवर इल्म से आरास्ता भी किया उनकी तरबियत भी की उन्हें दुआएं भी दी और आज इस पीराना साली की उम्र में हम जैसे लोग अगर आप यहाँ से बर्मिंगम जाए ना आप रास्ते में सर्विस पे रुकते हैं गाड़ी पे कभी यूं बैठेंगे कभी यूं बैठेंगे कभी किस तरह बगैर किसी सपोर्ट के वो आम नहीं है। हज़रत अल्लामा एक घंटा आपने पूरा बयान फरमाया है अल्लाह ताला ऐसी अजीम हस्तियाँ ऐसे जो इल्म के खजाने हैं जो एक इल्म का मरकज हैं अल्लाह ताला इनके साये को हम अहले सुन्नत पे तादेर उन्हें कायम दायम रखे और अल्लाह ताला इनकी उस अपने इल्म की उस आबिशार से हर इंसान को अपनी अपनी इल्म की जो तिश्ना भी है उसे बुझाने का मौका नसीब फरमाए। कुछ अल्लाह साहब इरशाद फरमाना चाहते हैं जिन हजरात को मुरीद होना होगा आगे आ
जाए पांच मिनट लगेगा छोड़ जाएंगे चलिए फतेह पढ़िए आप लोग
whoever wants to become फतेह पढ़िए quickly come to the front जिसको मुरीद होना हो तालिब होना हो सजीदे वैद करनी हो आगे आ जाए प्लीज और फातिहा पढ़े
और इंशाल्लाह आपके लिए हजरत की इस बयान के बाद खाना मौजूद है आप चाहो से किसी ले जाएंगे। और वहाँ आप सुकून वगैरह के साथ खाना ताना वो करना है कि कोई भाई लंगर खाए बगैर यहाँ से घरों की तरफ रवाना ना।
Those people who are at the front can hold the chadar. Those people who are behind, put your right hand on the shoulder of the person in front of you.
Fatiha padhiye. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قرية بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا لطیف و یا نور و یا ہادی یا حق و یا مبین. یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے. الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. نماز روزے ہر فرد ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں سے میل جول اور دوستی رکھنے سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے गुनाहों से बचा,
गुनाहों से बचा
और शरीयत का मुझे पाबंद बना,
और शरीयत का मुझे पाबंद बना।
या अल्लाह,
या अल्लाह,
मैं मुरीद हुआ,
मैं मुरीद हुआ,
जो तालिब हो रहे हैं वो यही कहें, मैं तालिब हुआ,
मैं तालिब हुआ,
सिलसिला ए अलिया
अलिया
आलिया
आलिया
कादिरिया
कादिरिया
बरकातिया
बरकातिया
रज़विया
रज़विया
मुस्तफ़विया में और अमजदिया
और अमजदिया
अजीजिया में,
अजीजिया में
मैंने अपना हाथ
हुज़ूर
सैयदना
गौसे आज़म
महबूब सुभानी
सैयदना
शेख
अब्दुल
क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैह
के
दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे
क़यामत के दिन
उन्हीं के गिरोह में उठा।
आमीन
या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सुन्नी व शुर हाउलाई फी ज़ुमरत सैयदना गौसुल आज़म तातिलवा अमीन सैयदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरज़ुक़नी व अरज़ुक़ हाउलाई शफ़ाअत हबीबिकन नबील करीम यौम ला जद्द व ला माल व ला बनीन। या अल्लाह, हमारे तमाम मशाइख सिलसिले क़ादरिया बरकातिया रज़विया मुस्तफ़िया और सिलसिले क़ादरिया बरकातिया रज़विया अमजदिया अज़ीज़िया के फ़ैज़ बरकात से इन सबको मालामाल और सिरात मुस्तक़ीम पर चला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला नबी करीम وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.